Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Bhadram No Apivataya Manaha. Om Shanti Shanti Shantihi. दश श्लोकी न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायुर्नखम् नेन्द्रियम् वा न तेषाम् समूह अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्तेकसिद्धस्तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मे धारणाध्या योगादयोऽपि अनात्माश्रयाहम् ममाध्यासहानात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थम् सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न साङ्ख्यम् न शैवम् न तत् पाञ्चरात्रम् न जैनम् न मीमांसकादेर्मतम् विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवल न चोर्ध्वम् न चाधो न चान्तर्न बाह्यम् न मध्यम् न तिर्यम् न पूर्वापराधिक् वियद्व्यापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेको वशिष्ठ शिवः न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीनम् न कुब्जम् न पीतम् न ह्रस्वम् अरूपम् तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वम् न चाहम् न चायम् प्रभ स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुस्तदेको वशिष्ठ शिवः के न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर्न विश्वो न वा तैजसः प्राग् अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणाम् तुरीयस्तदेको वशिष्ठ शिवः के अपि व्यापकत्वाद्हितत्वप्रयोगात् स्वतः सिद्धभावात् अनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तम् तदन्यत् तदेको वशिष्ठ शिवः के न चैकम् तदन्यत् द्वितीयम् कुतः स्यात् न वा केवलत्वम् न चाके न शून्यम् न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथम् सर्ववेदान्तसिद्धम् रवीणि। ये दश श्लोकी आचार्य शंकर के द्वारा विरचित है। अभी तो इस महीने में 9 तारीख को अक्षय तृतीया, पंचमी आचार्य शंकर के जयंती 11 तारीख को। आचार्य की बड़ी कृपा है हम जैसे साधकों के लिए, अधिकारियों के लिए इतने सरल 10 श्लोकों की जो रचना की, जिसके माध्यम से तत्त्वमसी महावाक्य का विचार पूर्वक ज्ञान हो और साधकों का कल्याण हो, इसी उद्देश्य से इसकी रचना की गई। कल आप लोगों ने यह श्रवण किया कि जो अहम प्रत्यय का स्वरूप है, एक है, अवशिष्ट है, अद्वितीय, और साथ में कह दिया केवल निर्धर्मकः, न भूमिर् न तोयम् न तेजो न वायु न खम न इंद्रियम न वा तेषाम समूहः। पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि एक एक करके भी हम नहीं हैं, ना ही इनका जो समूह है वह भी हम नहीं है। अनैकांतिकत्वात् सुषुप्तेक सिद्ध, जो ऐसा अविनाशी हमारा स्वरूप है वही मैं हूं, जो शिव स्वरूप है वह केवल है, अवशिष्ट है, एक है। ये इसका सामान्यतया शब्दार्थ हुआ। अद्वितीय जो कहा था, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, जब तक हम लोग अपने ऊपर धर्मों का आरोपण करते हैं ना, तब तक ये समस्या बनी रहती है। सिद्धांत बिंदु टीकाकार जो मधुसूदन सरस्वती हैं, वो आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं पृथ्वी नहीं हूं, मैं पृथ्वी नहीं हूं और पृथ्वी मैं नहीं हूं, दोनों तरफ चलना पड़ेगा ना। जैसे कल बताया था, संबंध होता है द्विष्ठ, दोनों में मानना पड़ेगा, एक तरफा नहीं चलता, नहीं तो खींचाता नहीं चलेगी। परमात्मा का जो जीवात्मा के साथ संबंध है, जीव भाव में जो हम लोग यहां अपने को मान रहे हैं, पांच भौतिक उपाधि को लेकर जो हम बैठे हैं, पांच ही तत्व तो है ना, छठा भी है कुछ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। प्रारंभ के ग्रंथों को यदि हम पढ़े हों तो स्थूल शरीर में कितने तत्व माने जाते हैं? हाँ, 25 स्थूल शरीर में। आप लोग पक्के हो, फिर भी बीच में थोड़ा पूछ लेने से और पक्का हो जाता है। पंचीकरण प्रक्रिया, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, जब सृष्टि प्रक्रिया में बोलना हो तो आकाश से प्रारंभ करना चाहिए और लय प्रक्रिया में पृथ्वी के तरफ से गिनती शुरू करो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और उधर से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। अब अभी पंचदशी आप लोग सुन रहे हैं ना, उसमें आता है सब विस्तार से, पंचभूत विवेक प्रकरण में बताया है, वहां फिर पांचों का जो है आधा आधा कर दो, कितना हो गया 10, और पांच जो आधा वाला एक तरफ कर दो और जो पांच आधे हैं उसको फिर चार चार हिस्सा करो, कितने हो गए, पांच चौका 20 और जो पांच आधे पड़े मिला के बन गए 25। आकाश का जो पूरा आधा हिस्सा है उसमें फिर बाकी वायु का एक हिस्सा, तेज का एक हिस्सा, जल का एक हिस्सा और पृथ्वी का मिला करके 5 बनेगा। वायु वाला जो आधा हिस्सा है उसमें से आकाश का एक हिस्सा और बाकी उधर से 3 के एक एक हिस्सा। इस तरह से ये 25 तत्व वाला जो शरीर है, स्थूल शरीर, जिसको लेकर हम लोग दिन रात व्यवहार करते हैं, मैं आ गया, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, जब दशश्लोकी पढ़ने लगे तो कह दिया न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, ऐसा निषेध करने लगे। पृथ्वी मैं नहीं हूं, मैं पृथ्वी नहीं है, ऐसा सुस्पष्टीकरण होगा। हमारे वेदांत शास्त्र में विवेक का बड़ा महत्व है, विवेक प्रधान है वेदांत शास्त्र। बाकी जगह तो विवेकी सब मानते हैं अपने को, किसी को आप कहो ना कि तुम अविवेकी हो, बुरा लगता है सुनने में। और हम लोगों को इस बात का घमंड भी नहीं होना चाहिए कि हम वेदांती विवेकी है और बाकी सब अविवेकी है, लेकिन कहीं न कहीं प्रमाद करने के कारण विवेकिता और अविवेकिता की क्या पहचान हो सकती है, यह जरा विचारणीय है, विचार करने के योग्य है। कैसे विचार करें कि हम विवेकी हैं और वो लोग अविवेकी हैं? जब तक हम स्वयं हर चीज को अपने को कारण नहीं मानते, यही है अविवेकियों की पहचान। और जो लोग दूसरों को कारण मानते रहते हैं वे हो गए अविवेकी प्रधान। ध्यान देना है जरा, विवेकी और अविवेकी में अपने को हर जगह कारण मान लेना अर्थात अपनी जिम्मेवारी ले लेना। वेदांत शास्त्र ही एक ऐसा उपदेष्टा है बताने वाला, दुनिया में जो कुछ भी है जितनी भी चीजें हैं सबके प्रति कारण है तो कौन है, वो मैं हूं। ऐसी जिम्मेवारी ले लो आप सुखी रहोगे। अभी होता क्या है, अच्छा काम जहां हो उसके प्रति तो कारण हम अपने को मान लेते हैं, और जहां काम बिगड़ जाए बोले इसने किया, इसकी वजह से हुआ। एक श्लोक देख रहा था मैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पांच भूत मिल करके जो शरीर के प्रति कारण बनते हैं, तो जो सबका कारण होता है वही सबका कार्य भी होता है। एक तरफा केवल कारण ही रहता हो, कार्य न बनता हो, अथवा कार्य ही बनता हो कारण न बनता, ऐसा नहीं है। जो कारण बनता है वही कार्य भी बनता है, जो कार्य बनता है वही कारण भी बनता है। सर्वम सर्वस्य कार्यम स्यात् सर्वम सर्वस्य कारणम असंहतम मिथो नालम जड़म वस्तु प्रवर्तितुम। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये सब के सब जड़ हैं। इन जड़ों को संघत करने वाला, जोड़ करके रखने वाला कौन है? इस समय हम लोग पांच भौतिक शरीर को लेके बैठे हैं, 100 साल की गारंटी है इसकी, गारंटी है नहीं, गारंटी तो है, पहले डैमेज हो जाए अलग बात है। क्योंकि और लोगों को भी देखा है ना, किसी के मोबाइल जब चलता है कई वर्षों तक तो बोलते हैं अमुक कंपनी का मोबाइल बहुत मजबूत होता है। अब यहां पर हम लोग भी मोबाइल ही तो है, चलते फिरते मोबाइल, किस कंपनी का कौन सा मोबाइल है वो तो समय आने पर पता लगेगा, सैमसंग का है कि नोकिया का है किसका है। रात में चार्जिंग होके सवेरे बैटरी फुल होके आए नहीं हम लोग, अब यूज जितना करोगे तो मोबाइल जल्दी जाएगा, थोड़ा बचा बचा के करेंगे तो ठीक रहेगा। पांच भूतों का संघात, पांच भौतिक शरीर जिसको लेकर हम सब यहां बैठे हैं, सर्वम सर्वस्य कार्यम स्यात् सर्वम सर्वस्य कारणम असंहतम मिथो नालम जड़म वस्तु प्रवर्तितुम। हम विवेकी और अविवेकी में क्या पहचान है इसकी बात कर रहे हैं। भोक्ता और भोग्य जिस पृथ्वी के द्वारा हमारा शरीर बना, वही पृथ्वी एक तरफ शरीर में आने के कारण भोक्ता के रूप में दिखाई देती है और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जितनी भी वस्तु है वो सब हमारे लिए भोग के वस्तु बन जाते हैं। जो जो शरीर में चीजें हैं उन्हीं की आपूर्ति में पूरा जीवन हम लोगों का व्यतीत हो जाता है। जबकि ऐसा देखा गया है पूरे जीवन का निचोड़ आप निकालिए सार, हम लोगों का जीवन किसमें व्यतीत हो जाता है? 100 साल की आयु जो धरोहर के रूप में मिली है विरासत में, इसको हम कहां निवेश बोलते हैं? इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट किसमें निवेश करते हैं? भगवान ने तो कह दिया मये व मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेश है, तुम जो है अपने मन बुद्धि का निवेश किसमें करो? मुझ में करो। अभी हम लोग निवेश किधर कर रहे हैं? किसी भी कंपनी में लगाने के बाद उसका हमें रिटर्न क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा? जहां हम लगाने जा रहे कहीं डूब तो नहीं जाएगा? अच्छी तरह से परख करके ही किसी भी कंपनी आदि में हम अपने धन का निवेश करते हैं। जिस मन बुद्धि को जहां निवेश करना चाहिए वहां न लगा करके यदि आप अन्यत्र लगाते हो और उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलता है तो हमारी बुद्धिमत्ता मानी जाएगी क्या? इस बात को तो सब जानते हैं, भगवान स्वयं भी कह रहे हैं तुम अपनी बुद्धि का निवेश कहां करो और हम कर रहे हैं किधर। तो पूरा जीवन जो हम लोग व्यतीत करते हैं अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति में और प्राप्त वस्तु के संरक्षण में, तीसरा कोई काम नहीं। आप आंख बंद करके विचार कर लो, दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी का इन्हीं प्रयासों में जीवन चल रहा है। क्या? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कैसे करें, इसके लिए हम अपना समय व्यतीत करते हैं, और जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है उसके संरक्षण में, इसका उपभोग मैं करूं, इसका उपभोग कोई मेरे इच्छा के अनुसार जो हो वह करे। जीते जी की तो बात छोड़ो, जब हम जाने लगते हैं दुनिया से वो तो अपना बस नहीं चलता, नहीं तो कोई छोड़ के जाता ही नहीं, छोड़ के जाना पड़ता है। जितने भी लोग गए ना उनको छोड़ के जाना पड़ा है, जीते जी उन्होंने नहीं दिया। जब देखा अंतिम समय आ गया, अब ले तो जा नहीं सकते, बोले मेरे मन में आया कि तुम ही इसके अधिकारी हो, और अधिकारी बोले महाराज आप ऊपर नहीं ले जा पा रहे इसलिए आपने हमें अधिकारी माना, यदि आप ले जाने में सामर्थ्य होते तो आपको अभी तक कोई अधिकारी नहीं मिला तो आज कैसे मिलेगा? इसका मतलब है आप ले जाने में असमर्थ हो। पूरे दुनिया के लोगों का यही हिसाब है, ये श्लोक गीता में है ना, योगक्षेमम क्या है पूरा श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। देखो कितनी अच्छी बात है, अनन्याः, अनन्याः का अर्थ शायद भाष्यकारों ने ऐसा किया है कि अन्याश्रयाणाम त्यागः, अन्य किसी के आश्रय लेना, किसी को आश्रय बनाना, इसका जो त्याग है यही अनन्य भाव है। क्या हम लोग ऐसा कर पाते हैं? बच्चे हमारे सहारे बनेंगे बुढ़ापे में, सबको देखो ना, सब स्वार्थ से व्यवहार करते हैं, इससे संबंध जोड़ो काम में आएगा, तो भगवान के प्रति अनन्य भाव हो पाएगा फिर? अन्याश्रयाणाम, अन्य का मतलब ही वहां पर परमात्मा से अतिरिक्त, परमात्मा तो अपना स्वरूप है तो अनन्य ही है, लेकिन अनन्याः चिंतयन्तः, अनन्य भाव से जो चिंतन करते हुए, अनन्याः चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, परितः उपासते, चारों तरफ से अपने भाव को हटा करके केवल मुझ में ही मन बुद्धि को लगा करके जो चिंतन करता है, दूसरे किसी को अपना आश्रय नहीं मानता, ऋषभदेव जी जैसे भागवत में बोलते हैं, वो माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, जो मृत्यु से बचा सके, जो मृत्यु से बचा सके वही अपने, वो है परमात्मा। यहां हम चाहते हैं कि ये हमारा बचाव करेंगे, ये हमें बचा लेंगे, यहां तो सबके सब बेचारे, कौन किसको बचाएगा। फिर भी हम इस भ्रम में रहते कि ये हमारे काम में आएगा, ये हमारी रक्षा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानाम, नित्याभियुक्तानाम, उसके लिए मैं क्या हो जाता हूं। क्योंकि ये कुछ ऐसी साधना होती है, जैसे हम लोग विशेष अनुष्ठान करते हैं ना, तो अनुष्ठान में संकल्प लिया, 5 दिनों का 7 दिनों का अनुष्ठान लेते हैं, फिर पूरा हो गया छोड़ दिया। वहां जब तक हमने अनुष्ठान किया अनन्य भाव से तो किया, लेकिन नित्यता नहीं है उसमें। नित्यता के लिए यावत जीवन, आजीवन जो हमें करना है वो फिर जीवन ही अनुष्ठान बन जाता है। विशेष अनुष्ठान में तो केवल उतनी बुद्धि रहेगी कि नवरात्रि तक हमें देवी जी की उपासना करनी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ही हुआ, नवरात्रि पूरी हुई और दुर्गा सप्तशती के पुस्तक कहां रख दिया हमें याद भी नहीं है। अब तो जब अगली नवरात्रि आएगी तब खोजेंगे, अरे पिछले नवरात्रि में कहां रखा था हमें याद भी नहीं है। एक तो ऐसा हो गया, वो विशेष अनुष्ठान में जरूरत पड़ी पुस्तक निकाली पढ़े रख दिया। और एक ऐसा है कि जैसे रोज हमें टाइम से नाश्ता करना है, नहाना है, भोजन करना है, वैसे ही रोज हमें भगवान का भी चिंतन करना ही है। ये शायद 8वें अध्याय में वहां आया है, वो उसमें नित्य सह कहा है। नित्य सह का अर्थ वहां यही लिया है कि कभी भी इसमें खंडन नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम, योग हो गया अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, और प्राप्त वस्तु का संरक्षण जो क्षेम है वह मैं उसका वहन करता हूं। किसका? जो अन्य किसी का आश्रय छोड़ देता है, मेरे ऊपर जो आश्रित हो जाता है, अपने मन बुद्धि को जो मुझ में लगा देता है, उसको फिर अपने योग क्षेम की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका वहन मैं स्वयं करता हूं। अभी हम लोग क्या करते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ेंगे तो लगता है पता नहीं हमें अपने ढंग का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी अभी प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार फल की व्यवस्था करने वाला जो परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहे हैं, आज हमें जो कुछ भी मिला हुआ है, इसकी व्यवस्था जो कर रहा है, आप मानो चाहे ना मानो, हो तो रहा उसी की मर्जी से ना। अब हम उधर ध्यान ना दें, भूल जाए उनको, तो इसमें किसका दोष है। तो जैसे अभी तक जो कुछ भी मिला उन्होंने दिया, और आगे भी जो मिलेगा वही देंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। विधि के विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। रहिए नहीं, रहना ही पड़ता है, अपने हाथ में कुछ है भी नहीं, हाथ पैर पटकते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाते। तो ये जो अनन्यास चिंतयन्तो माम के द्वारा भगवान परमात्मा के प्रति कैसे निर्भर होना चाहिए, भक्तों का जो लक्षण बताया, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, ये कब हम बोल सकते हैं, जब परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। अब विवेक जो हम करते हैं इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, कोई भी क्रिया होती है, क्रिया अर्थात कर्ता और भोक्ता, भोक्ता में चेतन की प्रधानता होती है, कर्ता में प्राण की प्रधानता होती है। हाँ, किसकी प्रधानता होती है? कर्ता में प्राण की प्रधानता होती है और भोक्ता में चेतन की प्रधानता होती है। न तेषाम समूह कहा है, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम ने इंद्रियम न तेषाम समूह। इस शरीर से जिन जिन वस्तुओं का हम लोग उपभोग करते हैं अपने अनुकूल जब हो गया तो उसमें कारण मान लेते अपने को, और जहां प्रतिकूल हुआ वहां नाम लगा दिया दूसरे का। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। याज्ञिक दृष्टि से इस जीवन का यदि प्रयोग किया जाए, हमारे यहां कर्म को कह दिया अविद्या अज्ञान, और उपासना को कह दिया विद्या। अब विचार करने पर देखें तो विद्या का मतलब केवल ब्रह्म विद्या ही होना चाहिए, उपासना को विद्या क्यों कह दिया? तो कहते लक्षणा के द्वारा उपासना आदि में विद्या का प्रयोग होता है। लक्षणा उसको बोलते हैं जिस बात को कहे और उसी के द्वारा बगल वाली बात भी जान ली जाए, उसका नाम है लक्षणा। इसको सरल हिंदी में बोलना हो ना, ऐसे लक्षणा की बात तो आप लोग सुनते होंगे, लेकिन इसका सरल अर्थ होता है जो बात कही जाए उसी बात के बगल वाली बात भी जान ली जाए, उसी का नाम क्या है? लक्षणा। दृष्टांत से समझ सकते हैं, बंबई जो है समुद्र में है। बंबई कहां पर है? समुद्र पर बसा हुआ है। अब समुद्र में बंबई आ नहीं सकता, तो वहां अर्थ ये करना पड़ेगा कि समुद्र के किनारे है, इसी को लक्षणा बोलते हैं। मकान में तरेड़ आ गई, चटक गया, दीवारें चटकी हुई है, बोले ये मकान तो गिरना ही चाहता है। मकान क्या गिरना चाहता है? वो तो जड़ है, उसमें चाहना कहां हो सकता है? इच्छा होगी क्या मकान में? तो वहां ये कहना पड़ेगा कि अभी मकान गिरने ही वाला है, गिरना ही चाहता है बोल तो रहे, लेकिन लक्षणा के द्वारा कहना पड़ेगा ये गिरने ही वाला है, इसी को लक्षणा बोलते हैं। उपासना के माध्यम से भी परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा को प्राप्त कराने वाली है, इसलिए उपासना में विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में विद्या तो ब्रह्म विद्या ही है, और हमारे यहां तो एक विद्या नहीं 14 विद्याएं मानी गई। 14 विद्याओं का परंपरा से सभी में लक्षणा के द्वारा विद्या का उपचार होता है। वास्तव में विद्या तो एकमात्र ब्रह्म विद्या है, वेद विद्या।